الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج إن شاء الله تعالى میں آپ کی ملاقات کرانے جا رہی ہوں ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت سے جو میرے لیے بھی ایک رول ماڈل ہے. میں خود ان کو ایڈمائر کرتی ہوں اس لیے کہ ان کی زندگی ایسی ہے. یہ کون ہے؟ یہ عروہ بن زبیر. دیکھتے ہیں یہ کیسی شخصیت ہے. رکن یمانی کے قریب کچھ نوجوان بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. یوں دکھائی دیتا ہے کہ ان کا تعلق کسی معزز گھرانے سے ہے. پوچھنے پہ پتہ چلتا ہے کہ ایک عبداللہ بن زبیر ہیں، دوسرے مصعب بن زبیر، تیسرے عروہ بن زبیر یعنی تینوں بھائی، اور ایک عبد الملک بن مروان. ان چاروں میں تبادلہ خیال ہو رہا ہے. ان میں سے ایک نے کہا، آج ہم میں سے ایک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی دل پسند چیز مانگے گا. یہ بات سن کے سب سوچنے لگے کہ ہم کیا مانگیں. پھر تھوڑی دیر بعد ان میں سے ایک نے یعنی عبداللہ بن زبیر نے کہا، میری دعا ہے کہ میں حجاز کا حکمران بنوں اور خلافت کا تاج میرے سر پہ ہو. ان کے بھائی مصعب بن زبیر نے کہا، میری دلی تمنا ہے کہ میں کوفہ اور بصرہ کا حکمران بنوں اور میرا کوئی بھی مخالف نہ ہو. تیسرے نوجوان عبد الملک بن مروان نے کہا، اگر تم دونوں اتنے پہ ہی کافی سمجھتے ہو اپنے لیے تو تمہیں مبارک ہو، میری تو دلی خواہش ہے کہ میں پوری دنیا کا حکمران بنوں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت مجھے ملے. لیکن عروہ بن زبیر جو تھے یہ خاموش بیٹھے رہے، انہوں نے کچھ نہیں کہا. تینوں کہنے لگے، آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ بھی تو کچھ بتائیں. انہوں نے کہا، جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ تمہیں مبارک ہو، مگر میری دلی تمنا یہ ہے کہ میں عالم بنوں اور با عمل عالم، لوگ مجھ سے قرآن اور حدیث کا علم سیکھیں، مجھ سے دینی احکامات معلوم کریں، اور پھر آخرت اللہ کی رضا اور جنت کو میرا مقدر بنا دیا جائے. دن گزرتے گئے. ایک دن وہ بھی آیا کہ عبداللہ بن زبیر کو واقعی حکومت مل گئی، حجاز کی، مصر، یمن، خراسان اور عراق کی. پھر اس کے بعد بیت اللہ کے قریب اسی جگہ پر جہاں پہ انہوں نے یہ دعائیں کی تھی، چند قدم کے فاصلے پر ان کو قتل کر دیا گیا. حضرت مصعب بن زبیر کو ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن زبیر نے عراق کا گورنر مقرر کر دیا تھا، اور پھر انہیں بھی قتل کر دیا گیا. پھر عبد الملک بن مروان اپنے باپ کی وفات کے بعد خلیفہ بنے. اس طرح تینوں نوجوانوں کی تمنائیں پوری ہو گئیں، مگر عروہ بن زبیر کی تمنا کا کیا بنا؟ عروہ بن زبیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے ایک سال پہلے ایک بڑے عالی شان اور معزز گھرانے میں پیدا ہوئے تھے. ان کے والد حضرت زبیر بن عوام حواری رسول اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے، یعنی جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہو. اور ان کی والدہ جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء تھی. ان کے نانا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی دادی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی. سوچیں کتنا نسبتیں تھیں ان کی اور ان کی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ان کی وفات ہوئی تھی انہیں دفن کرنے کا وقت آیا تھا تو یہ پہلے قبر میں اترے تھے تاکہ اپنے ہاتھوں سے ان کی قبر کو درست کریں. تو اس سے بڑھ کے کس کا نصب ہو سکتا ہے؟ تو علم کا ان کو اتنا شوق تھا جو انہوں نے دعا کی تھی، تو واقعی پھر انہوں نے بڑے بڑے صحابہ سے علم حاصل کیا. یہ بھی تابعی ہیں نا، تو حضرت علی سے، عبد الرحمن بن عوف سے، زید بن ثابت سے، ابو ایوب انصاری سے، اسامہ بن زید سے، یعنی ابو ہریرہ سے، بہت سارے بڑے بڑے صحابہ سے، اور مدینہ کے 7 فقہا میں ان کا شمار ہوتا تھا، یعنی جن سے لوگ دینی مسائل پوچھتے تھے. حکمران رعایا کے متعلق دین اور دنیا کے امور ان سے پوچھا کرتے تھے، ان سے ان کے مشورے سے کرتے تھے، اور یہ علم کا اور عمل کا پیکر تھے. موسم گرما میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، راتوں کو جا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. قرآن مجید کے ساتھ ان کی دوستی تو مثالی تھی، اکثر قرآن کی تلاوت میں ہی مشغول رہتے تھے، روزانہ قرآن پاک کا 1/4 حصہ تلاوت کرتے تھے دیکھ کے، پھر رات کے وقت یہی حصہ نوافل میں زبانی پڑھتے تھے، اور اپنی وفات تک ان کا یہی معمول رہا. سبحان اللہ، یعنی دن میں دیکھ کے پڑھتے تھے اسی حصے کو، ایک طرح سے جیسے دہرائی ہو جاتی، اور رات میں پھر اسی حصے کو نوافل میں پڑھا کرتے تھے بغیر دیکھے، یعنی حفظ، ظاہر ہے ان لوگوں کو تو حفظ بھی ہوتا تھا. پھر ان کے ساتھ یہی ان کا معمول رہا، صرف ایک دفعہ زندگی میں ایسا ایک واقعہ ہوا کہ یہ قرآن پاک نہیں پڑھ سکے، صرف ایک دفعہ زندگی میں. اور وہ واقعہ ہم ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوا تھا، مگر نماز میں ان کو اتنا سکون ملتا تھا، اور نماز کی حالت میں ایسے لگتا تھا کہ زمین پر ان کو جنت نصیب ہو گئی. تو نماز بہت ہی شوق سے پڑھتے تھے، رکعتیں ان کی بہت لمبی ہوتی تھی. ایک دفعہ کسی کو انہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس کے اپنے پاس بلایا اور بڑے محبت سے کہا، بیٹے کیا تجھے کوئی ایسی ضرورت ہے جو رب کائنات کے دربار میں پیش کرو، کیا ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں؟ اس سے تو ہر چیز مانگنی چاہیے، اور میں تو اس سے نمک تک مانگتا ہوں. یعنی ہمیں بھی، ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. اور صحابہ کرام ایسے ہی ہوتے تھے، اپنی ہر ضرورت اللہ تعالیٰ کے آگے رکھتے تھے. عروہ بن زبیر انتہائی نرم مزاج تھے، خوش اخلاق تھے، بہت سخی تھے. ان کا مدینہ میں سب سے بڑا باغ تھا جس میں میٹھے پانی کا چشمہ تھا، گھنے سایہ دار اور پھلدار درخت تھے. درختوں کی حفاظت کے لیے سال بھر اس باغ کے ارد گرد دیوار بنائے رکھتے تھے تاکہ مویشی اور بچے نقصان نہ پہنچائیں. جب پھل پک کے تیار ہو جاتا، لوگ اس کی طرف دیکھنے لگتے تو یہ اپنے باغ کی دیوار مختلف جگہوں سے گرا دیتے تاکہ لوگ آسانی سے باغ میں آ کے اور پکا ہوا پھل کھا سکے. لوگ آتے جاتے، باغ میں داخل ہوتے، جو پھل ان کو پسند آتا وہ کھاتے، اور جاتے ہوئے جتنا چاہتے اپنے گھر لے جاتے. اتنی ان کی بڑی سخاوت تھی. ولید بن عبد الملک کے دور حکومت میں عروہ بن زبیر کو ایک آزمائش سے گزرنا پڑا، اور اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. یہی وہ وقت تھا جس کا میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے اس دن قرآن نہیں پڑھا. ہوا یہ کہ خلیفہ نے ان کو ملاقات کے لیے دعوت دی. یہ اپنے بیٹے کو، بڑے بیٹے کو لے کر دمشق روانہ ہوئے. جب وہاں پہنچے تو خلیفہ نے بڑا اچھا ان کا استقبال کیا، ان کو شاہی مہمان کا اعزاز دیا، اور ان کے بیٹے کو سواری کا شوق تھا تو شاہی استبل میں ان کو لے جایا گیا. وہاں پہ جب وہ گیا تو ایک منہ زور گھوڑے کے قریب آیا، اور اس نے زور سے جو ٹانگ ماری تو اس کے سینے میں لگی، اور یہ جان لیوا ثابت ہوئی. پھر غموں سے نڈھال باپ جب اپنے لاڈلے بیٹے کی قبر پر مٹی ڈال رہا تھا تو اس دوران ان کے پاؤں میں اچانک شدید درد شروع ہوا، اور بڑی تیزی سے پنڈلی کی طرف پھیلنے لگا. حالت اتنی خراب ہو گئی کہ خلیفہ نے پریشان ہو کے فوراً سارے شاہی جو طبیب تھے ان کو بلا لیا کہ علاج کرو ان کا، اور کوئی غفلت نہیں برتنی. تو وہ جتنے بھی طبیب تھے انہوں نے سب نے ایک ہی بات کہی کہ ان کی ٹانگ کاٹ دی جائے، ورنہ یہ ان کی موت کا سبب بن جائے گی. जब टांग काटने के लिए एक माहिर जो सर्जन था वो अपने औजार लेकर हाजिर हुआ, तो तबीब ने हजरत उरवा से कहा, हम आपको थोड़ी सी शराब पिलाएंगे ताकि टांग कटने की तकलीफ आपको ना महसूस हो। आपने ये बात सुन के फरमाया, ऐसा नहीं हो सकता, मैं हराम के जरिए अपनी आफियत की उम्मीद नहीं रखता। तबीब ने कहा, फिर तो आपको कोई और नशावर चीज पीने पड़ेगी, वरना तकलीफ तो नाकाबिले बर्दाश्त होगी। तो फरमाते, नहीं, बगैर कोई नशावर चीज दिए ही आप इसको काटे, इस दर्द में मुझे सवाब मिलेगा। जब जर्राह ने, जो सर्जन था, उसने टांग काटने के लिए जब तैयारी कर ली, तो बहुत सारे आदमी इनकी तरफ बढ़े, तो पूछा, ये क्यों आ रहे हैं? बताया गया कि ये आपको पकड़ेंगे, क्योंकि जब आपकी टांग कटने लगेगी तो इतना शदीद दर्द होगा कि आप संभल नहीं सकेंगे, और फिर ये ना हो कि कुछ और ही नुकसान हो जाए। ये सुन के आपने फरमाया, इन तमाम लोगों को पीछे हटा दो, इनकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए इस वक्त में सिर्फ अल्लाह की याद और उसकी हमदो सना और उसकी तस्बीह यही काफी है। बिस्मिल्लाह पढ़ के आप अपना काम शुरू करें, मेरी फिक्र ना करें, मेरा अल्लाह हामी और नासिर। जर्राह ने पहले कैंची के साथ इनकी टांग का गोश्त काटा, फिर हड्डी पे आरी चलाई। इधर उरवा बिन जुबैर जो थे, इन्होंने बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर मुसलसल पढ़ना शुरू कर दिया, और जर्राह अपना काम करता रहा और ये जिक्र इलाही में मशगूल रहे। टांग कट गई और जब खून बंद करने के लिए खोलते हुए तेल में टांग को डुबोया गया, तब ये बेहोश हो गए। और इनकी पूरी जिंदगी में ये सिर्फ वो मौका था जिसमें कुरान मजीद की मंजिल पढ़ने से नागा हो गया। अल्लाह अकबर। जब ये होश में आए तो अपनी टांग को पकड़ के गौर से देखने लगे और इसे अपने हाथ से उल्टाने पलटाने लगे, फिर बड़े दर्द भरे लहजे में कहा, टांग तू गवार है ना, मुझे अल्लाह की कसम जिसने तुझे पैदा किया कि मैं तेरे जरिए चल के मस्जिदें जाया करता था, मस्जिद जाया करता था तेरे जरिए चल, और अल्लाह जानता है कभी तुझे किसी हराम की तरफ चला के नहीं लेके गया। खलीफा को अपने मेहमान की मुसीबत को देख के बड़ा रंज हुआ कि चंद दिनों में अपना जवान बेटा भी इन्होंने खो दिया, एक टांग से भी महरूम हो गए। तो एक दिन मेहमान खाने में उनको जाने के लिए, उनको देखने के लिए जाने लगे खलीफा, तो अचानक एक कबीले का एक वफद मुलाकात के लिए पहुंच गया। खलीफा ने उसको अंदर बुला लिया, क्या देखते हैं कि वफद में एक नाबीना शख्स भी है। खलीफा ने इससे पूछा, आपकी नजर को क्या हुआ? उसने बताया, अमीरुल मोमिनीन, मैं अपने कबीले में सबसे ज्यादा माल और अहलो अयाल वाला था, मैं अपना सब कुछ साथ लेके अपने कबीले के इलाके में गया और एक नशेबी जगह पे पड़ाव डाला, रात के वक्त अचानक सैलाब आ गया और सब कुछ बहा के ले गया, सिर्फ मेरा एक बच्चा रह गया, नौमौलूद बच्चा, और एक ऊंट मेरे हाथ लग गया, ऊंट मुंह जोर था, वो रस्सी छुड़ा के भाग निकला, मैं जमीन पे बच्चे को लेटा के ऊंट पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा, तो मुझे बच्चे की चीखने की आवाज आई, मुड़ के देखा तो एक दहशतनाक मंजर दिखाई दिया कि खूनखार भेड़िया बच्चे के सर को अपने मुंह में दबाए खड़ा और बच्चा जोर से चिल्ला रहा है, मैं उसको छुड़ाने के लिए दौड़ा, लेकिन मेरे वहां पहुंचने से पहले वो मेरे बेटे का सर चबा चुका था। जब मैं उसे वहीं छोड़ के ऊंट पकड़ने के लिए भागा तो अभी ऊंट के करीब ही पहुंचा था कि उसने जोर से मुझे टांग मारी जो मेरी पेशानी पर लगी और इसकी हड्डी टूट गई और नजर जाती रही। इस तरह मैं एक ही रात में, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अपने फैमिली, अपने माल और अपनी बीनाई जैसी अजीम नेमतों से महरूम हो गया। खलीफा ने जब ये दास्तान सुनी तो अपने दरबान से कहा कि हमारे मेहमान उरबा बिन जुबैर के पास इनको ले जाओ, ताकि वो इनकी दास्तान गम सुन के उनको पता चले कि दुनिया में मुझसे भी ज्यादा दुखी और मुसीबत ज़दा और लोग मौजूद हैं। जब उरबा बिन जुबैर को शाही सवारी पर पूरे एजाज़ो इकराम के साथ मदीना ले जाया गया वापस उनके घर के लिए, तो आप अपने घर में दाखिल होने से पहले अपने घर वालों को कहते हैं, जो तुम देख रहे हो उससे घबराना नहीं। अल्लाह ताला ने मुझे चार बेटे दिए थे, उसने एक ले लिया, तीन अभी बाकी हैं, उसका शुक्र है। अल्लाह ताला ने मुझे चार आजा दिए, दो बाजू और दो टांगे, एक उसने ले लिया, तीन अभी बाकी हैं, उसका शुक्र है। वल्लाही उसने थोड़ा लिया है और ज्यादा मेरे पास बाकी रहने दिए। उसने जिंदगी में सिर्फ एक ही मर्तबा आजमाइश में डाला है और बेशुमार आफतों से मुझे बचाया हुआ। सुभान अल्लाह, क्या शुक्र गुजारी थी। जब अहले मदीना को, उनके जो बड़े हर दिल अजीज इमाम थे और बड़े आलिम थे, जब उनका पता चला कि इनके साथ ये हुआ है, तो लोग जौ दर जौ इनकी जियारत के लिए हाजिर होने लगे। लोगों के बड़े चहीते थे ये, सब ने बेटे की ताजियत की और इनकी टांग की महरूमी पर दिलासा दिलाया। तो उनमें एक इब्राहिम बिन मोहम्मद भी थे, उन्होंने बड़ी एक जबरदस्त बात की। उन्होंने फरमाया कि आपके जिस्म का एक हिस्सा और आपकी औलाद में से एक बेटा आपसे पहले जन्नत में पहुंच चुके हैं और बाकी भी इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने आपकी जानिब से हमारे लिए वो चीज़ बाकी रहने दी जिसके हम मोहताज हैं, यानी आपको बाकी रहने दिया, और इससे हम कभी मुस्तगनी नहीं हो सकते। और वो है आपका इल्म, आपका फिक्र, आपकी राय। तो उन्होंने कहा कि आपको बाकी रहने दिया, यानी आपकी बाकी चीजें जो अल्लाह ताला ने ले ली है वो आपसे पहले जन्नत में चली गई, आप भी चले जाएंगे, लेकिन हमें अभी आपकी जरूरत है। तो ये जिंदगी भर मुसलमानों के लिए हिदायत और उनको खैर और भलाई के तरफ बुलाने वाले रहे। अपने बेटों को इल्म हासिल करने की बहुत तरगीब देते थे, अक्सर कहते थे मेरे प्यारे बेटो इल्म हासिल करो और इसका हक अदा करो, अगर तुम अपनी कौम में कमजोर भी हुए तो अल्लाह ताला इल्म की बरकत से तुम्हें मुमताज बना देगा। फिर आह भर के कहते थे, हाय अफसोस, क्या दुनिया में जाहिल से बढ़कर भी कोई बदबख्त होगा? हरगिज नहीं, यानी इससे ज्यादा बदकिस्मत कोई नहीं है जो जाहिल रह जाए। और अपनी औलाद को तलकीन करते थे कि अल्लाह ताला के रास्ते में सदका इस तरह दिया करो जिस तरह तोहफा किसी अजीज प्यारे को देते हो। और कहते थे, कभी कोई ऐसी चीज किसी को सदका ना देना जो अपनी कौम के किसी बड़े को देते हुए तुम शर्माओ। तो इस तरह की नसीहतें ये किया करते थे। और जब देखते थे कि लोग ऐशो इशरत में मगन हो रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से उनको मिसालें देते थे और फरमाते थे कि देखो उन्होंने कैसा वक्त काटा कि 40 40 दिन उनके घर आग नहीं जलती थी, ना चराग रोशन होता था, ना चूल्हा जलता था, और वो खजूर और पानी पे गुजारा करते थे। इन्होंने 71 साल की जिंदगी पाई और जब आखिरी वक्त आया तो इनका रोजा था। तो घर वालों ने कहा आप रोजा तोड़ दे, लेकिन नहीं माने। फरमाते हैं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं रोज़ा हौज़े कौसर के पानी से जन्नत के बर्तन के साथ इफ्तार करूं। सुभान अल्लाह, ये हैं वो बड़े लोग, और इससे हमें इल्म की फजीलत पता चलती है। इल्म इंसान के पास हो तो अल्लाह ताला उसको कितने बड़े मकामात से नवाजता है, और ये जो फहम भी आता है ये इल्म के जरिए आता है। तो इल्म की दौलत आप भी हासिल कीजिए, इसके लिए थोड़ा वक्त निकालिए। इसके इतने फवायद हैं कि मैं इतने मुख्तसर वक्त में गिनवान भी नहीं सकती। अगर आपने आज तक इल्म हासिल करने की तरफ तवज्जो नहीं दी तो भी कोई मसला नहीं है, आप फैसला कर लें। कभी ना कभी तो इंसान सोचता है इल्म के फजाइल सुन के, आपकी कितनी भी उम्र हो गई हो, कभी ना कभी तो सोचें कि अल्लाह की किताब का इल्म लूं। कुरान पाक की तिलावत अलग चीज है और इसकी समझ अलग चीज है। कुरान पाक का हक अदा ही नहीं हो सकता जब तक कि आप इसका फहम हासिल ना करें, इसको सीखें नहीं, इसके ऊपर गौर व फिक्र ना करें, इसको समझें नहीं। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं ना कि कुरान इसलिए नाजिल किया गया ताकि इस पर गौर व फिक्र किया जाए, मगर हम अमूमन सिर्फ तिलावत करने को नेकी समझते। हालांकि समझना और उसके ऊपर अमल करना, ये है मकसद कुरान का, जबकि लोग इसको इसकी तिलावत को ही काफी समझ लेते। तो इंशाअल्लाह ताला इस रमजान में जो ये एक टाइम होता है ना, जिसमें इंसान कुछ ना कुछ अपने फ्यूचर के लिए, अपने आने वाले साल के लिए कुछ अपनी कोई अपने गोल सेट करता है, तो इस दफा इस चीज का गोल बनाइए कि मैंने इल्म हासिल करना। और रमजान ऐसा वक्त है कि जो आप पूरे साल करना चाहते हैं ना, उसकी स्टार्ट करने का बेहतरीन टाइम है। जैसे आपने तहज्जुद की आदत डालनी है, रमजान में शुरू कर दें। आपने कोई भी और इबादत को करना है, आप रमजान में शुरू करें। किसी गुनाह को छोड़ना है, रमजान में छोड़ें। मसलन आप हिजाब लेने का सोचते हैं, तो बेस्ट टाइम है स्टार्ट करने का। वैसे अगर देखा जाए तो जब हम मस्जिद जाते हैं तो हम हर सब हिजाब लेकर जाते हैं, हज और उमरे पे भी जाते हैं तो वहां पे भी हिजाब लेते हैं, मगर जो ही हम मस्जिद से निकलते हैं या वहां से वापस आते हैं तो क्या वजह है? क्या हम सब उतार देते हैं? क्या मस्जिद में तो अल्लाह है और बाहर अल्लाह नहीं है? आप कहेंगे मस्जिद अल्लाह का घर है इसलिए हम ऐसा करते हैं, मगर मस्जिद से बाहर भी तो सारी की सारी जमीन अल्लाह ही की है। हम ऐसे खुदा को नहीं पूछते जो सिर्फ मस्जिद में पड़ा है। जैसे वो अपने बुत रखते हैं मुशरिक, तो वो सोचते हैं कि यहीं पे ये उसके आगे बस माथा टेक दिया और फिर उसके बाद वहां से निकल आए अपने मंदिरों से। हमारा खुदा ऐसा नहीं है। हमारा रब तो वो है जो हर लम्हा हमें देख रहा है, वही रब जो मस्जिद में है, वही रब हर जगह है। बाकी तो इस रमजान में आइए कदम बढ़ाएं अल्लाह ताला की तरफ, और अगर आप अभी तक हिजाब नहीं लगते तो आप लेना शुरू कर दें। यकीन जाने हमारी खूबसूरती में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बार जिनकी हम नुमाइश करते हैं वो भी तो अल्लाह ने ही दिए हैं। वो चाहे तो ऐसी बीमारी लगा दे कि एक बाल भी सर पे ना रहे, फिर हम तो सर ढांपने में मजबूर हो ही जाएंगे। आपके सामने ऐसी बीमारियां मौजूद हैं कि सारे बाल गिर जाते हैं। जिस जिस्म की नुमाइश हम करते फिरते हैं, इस जिस्म को कोई बीमारी लग जाए तो कैसे दिखाएंगे ये कपड़े? फिर तो सिर्फ अस्पताल के गाउन में ही रहना पड़ेगा हर वक्त। फिर क्यों हम अल्लाह ताला को नाराज करें? आप देख रहे हैं इस कहानी के अंदर एक ऐसा शख्स भी है जो रातों रात हर चीज से महरूम हो गया, तो हम डरते नहीं है इस बात से कि अल्लाह ताला महरूम कर दे अगर सेहत से, बालों से, तो हमारा क्या बनेगा? अक्सर हम ये कहते हैं हमारे शौहर पसंद नहीं करते, मैं शौहर की नजरों में कैसी लगूंगी? तो किसी के दिल में भी याद रख के मोहब्बत डालना ये अल्लाह ताला का काम है। दिल अल्लाह की दो करीम उंगलियों के दरमियान है, वो जिधर चाहे दिलों को मोड़ दे। अगर बेपर्द होने से शौहर की मोहब्बत मिलती होती तो आज तक जितनी बेपर्द औरतें वो शौहर की फेवरेट होती और बड़ी सुखी रह रही होती, मगर आप देखें ऐसा नहीं है। सबसे बेवफा निकलते हैं उनके शौहर। फिर दूसरी बात है, हमने शौहर को राजी करना है या अल्लाह को? आप कहेंगे शौहर का भी तो हुक्म मानना है, मगर अल्लाह ताला की नाफरमानी करके किसी का हुक्म नहीं मान सकते। जानते हो औरत को जब कफन भी दिया जाता है तो इसका हिजाब अलग से उसको पहनाया जाता है, तो मरते वक्त तो यही पहन के जाना है। जिसको मरते वक्त भी पहनना जरूरी है, वो क्या जिंदगी में जरूरी नहीं होगा? यकीन जाने मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो आपको ऐसे ही दीन की बातें सख्त बना के कोई पेश करूं। अगर कहीं कोई जरा भी गुंजाइश होती ना, तो मैं आपको सबसे पहले कहती कि नहीं, कोई बात नहीं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे ही रहें। मगर जितने अरसे से, 25 साल से मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ रही हूँ, कहीं कोई गुंजाइश नहीं मिलती। अगर कोई मिलती होती तो मैं खुद कर रहे थे। फिर हम क्यों अपने शौहर, वालदैन या बच्चों की खातिर क्यों अपनी कब्र को तंग करें? क्यों जहन्नुम का आजाब खरीदें? और क्यों अल्लाह की नजरों से गिर जाएं? हम अपनी कब्र में जाएंगे, उन्होंने अपनी कब्र में जाना। ना ही वो हमारा हिसाब किताब देंगे, ना हम उनका देंगे, तो क्यों उनकी खातिर हम अपनी आखिरत गंवा दें? तो प्यारी बहनों, किसी के लिए अपनी आखिरत ना गवा देना, ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। और मुझे आपके हिजाब पहनने या ना पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं सिर्फ आपकी हमदर्दी की खातिर बता रही हूं कि एक हदीस में हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया था कि जहन्नुम में सबसे ज्यादा औरतें होंगी, तो उसमें हमें पता चलता है कि ऐसी औरतें जो अक्सर उनमें ऐसी औरतें होंगी जो कपड़े पहने हुए भी नंगी हैं, और फिर जिनकी पिंडलियां नंगी, जिनके सर नंगे, ऐसी औरतों के बारे में फरमाया गया कि जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। तो क्या हम इस पे राजी हैं कि जन्नत मिले ना मिले, मगर यहां मैं बन संवर के सबको दिखा दूं? तो एक दिन लौटना है, एक दिन वापस जाना है, और उस रब की अदालत में हमें अकेले अकेले हाजिर होना है। मुश्किल लगता है इसलिए कि शैतान ने मुश्किल बनाया है, ये मुश्किल नहीं है, आप एक दफा करके देखें। और अगर गर्मी लगती है तो अल्लाह ताला सूरह तौबा में फरमाता है कि कह दीजिए जहन्नम की आग इससे भी ज्यादा गर्म है, काश वो समझ सकते। अब बात साहब हम कहते हैं बस मैं चाहती हूँ कि फिर एक दफा करूं तो छोड़ू ना, ये भी शैतानी चाल है। इस तरह तो सोचने लगे तो नमाज भी ना पढ़े, क्योंकि फिर नमाज भी क्या बता आज पढ़े और कल ना पढ़े। जब शुरू करें अल्लाह को राजी करने के लिए करें, और उससे दुआएं मांग मांग के करें कि अल्लाह तूने ही तौफीक दी है ना, तो इसको अब मरते दम तक मुझसे करवाते रहना, मुझे साबित कदम रखना। तो हमने बहाने नहीं करने, हम किसको बहाने सुनाते हैं? अल्लाह ताला को जो दिलों के हाल जानता है। हम कहते हैं दिल का पर्दा होता है, तो सहाबियात के दिल नाउज़ बिल्ला क्या पर्दे वाले नहीं थे? वो भी तो हिजाब लेती थी। फिर कोई लोग मुझे ये कहेंगे वो कहेंगे, तो अल्लाह के पैगंबरों ने तो इससे भी बड़ी बड़ी बातें सुनी। अल्लाह की खातिर अगर दो बातें सुननी पड़ गई तो कोई हर्ज नहीं। तो इस रमजान में एक कदम अल्लाह ताला की तरफ बढ़ाएं। अगर आप अल्लाह की तरफ ये कदम बढ़ाएंगे और उसकी खातिर कुछ कुर्बान करेंगे, यकीन जाने अल्लाह ताला आपको उन इज्जतों से नवाजेगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। मगर देर ना करें, इसलिए कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आज जो हमने अपनी रात सजानी है, उसको सजाने के लिए जैसे आपको मैंने कल कहा था ना, हमने सूरह मुल्क पढ़नी है, आयतल कुर्सी पढ़नी है, तो आज का जो काम है ना वो तो बहुत ही आसान है, मगर उसकी वजह से हम फरिश्ते की दुआएं ले सकते हैं। और वो काम क्या है? आप रात को जाहिर है सोने से पहले एक दफा बाथरूम तो यूज करते होंगे, तो जब आप निकले तो उसके बाद वुजू कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी रात को वुजू करके सोया तो एक फरिश्ता उसके कपड़े में रात गुजारता है, जो ही वो शख्स उठता है तो फरिश्ता कहता है अल्लाहुम्मा अग़फिर ली आब्दी फुलान, ए अल्लाह अपने फलां बंदे को, यानी उसका नाम लेके कहता है इसको बख्श दे। क्या फरिश्तों की दुआ कभी रद्द हो सकती? तो क्यों ना उनकी दुआ ले हम। लिहाजा फरिश्ते की दुआ लेने के लिए हमें क्या करना है? आसान सा तरीका, वुजू कर लें। आज की दुआ जो है ये भी बहुत जबरदस्त दुआ है। कल जो मैंने आपको दुआ बताई थी ना, ये सारे नुकसानात से हिफाजत के लिए है। दुनिया और आखरत का जितना नुकसान है ना, जितनी आफतें हैं बलाएं हैं, उनसे हिफाजत उस दुआ में थी, आफियत की जो दुआ थी। और आज की भी दुआ में आफियत भी है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो दुआ है ये दुनिया और आखरत दोनों के फायदे तुम्हारे लिए जमा कर देती है। दुनिया और आखरत की जो भलाइयां है ना, उनको जमा कर देने वाली दुआ है। सुभान अल्लाह, ये मुस्लिम में है ये दुआ। तो ये दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा अग़फिरली वरहमनी वाहदीनी वआफीनी वरजुकनी, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझ पे रहम फरमा, मुझे हिदायत दे, मुझे आफियत दे, मुझे रिस्क अता फरमा। तो ये वाली जो दुआ है इतनी आसान है। पांच सिर्फ चीजें हैं, पांच बातें मांगी गई हैं। अल्लाहुम्मा अग़फिरली वरहमनी वाहदीनी वआफीनी वरजुकनी। और यही दुआ आपने दो सज्दों के दरमियान जब आप बैठते हैं उसके लिए भी ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगा करते थे, उस वक्त भी आपने मांगनी है। ठीक है। और आज का जो जिक्र है वो देखिए, मैंने जो कल आपको जिक्र बताया था वो कितना जबरदस्त था। जादू और ये आजमाया हुआ जिक्र है। एक दफा मेरे साथ ऐसी कुछ बात हो गई थी कि वो बीमारी समझ नहीं आ रही थी कि इसकी क्या वजह है, लेकिन यही जिक्र, यानी मैं ऐसे ही आपको बातें नहीं बता रही, ये आजमाई भी बात है। यही 100 दफा पढ़ने से सुबह को अल्लाह ताला ने शिफा दी थी। वो जो जो भी समझता है ना कि उसके ऊपर किसी ने जादू कर दिया है या जादू की हिफाजत चाहता है, तो वो ये कलिमात कभी ना छोड़े। और आज के जो कलिमात हैं ये भी बहुत ही प्यारे कलिमात हैं। ये एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़े थे, तो लोगों में से एक आदमी ने यही कलिमात कहे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज खत्म की तो आपने पूछा कि किस आदमी ने ये कहे, तो एक आदमी ने कहा मैंने कहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे इतनी हैरत हुई कि इन कलिमात के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए गए। सुभान अल्लाह, कि यानी इतने जबरदस्त ये कलिमात हैं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि जब से मैंने ये सुना तो मैंने तो कभी ये कलिमात छोड़े ही नहीं। तो नमाज में भी आप पढ़ सकते हैं, दुआए इस्तफ्ताह के तौर पे आप इनको पढ़ सकते हैं। और क्या है, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाह बुकरत व असीला। अल्लाह सबसे बड़ा है, मैं उसकी बड़ाई बयान करता हूँ। अल्लाह ताला के लिए सारी तारीफ है और मैं उसकी पाकी बयान करता हूँ, सुबह को भी शाम को भी। तो ये आज का जिक्र और आज की दुआ, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम उसका जिक्र करते रहें हमेशा और उसी से हर चीज मांगने वाले बन जाएं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
This session is no longer being recorded. Muted, unmuted. Muted.
رب اغفر لي رب